कार्मिल पर्वत पर आग के माध्यम से परमेश्वर के प्रकट होने के बावजूद परमेश्वर के लोग मूर्तियों की पूजा करते रहे। उत्तर के सब राजाओं ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। अंततः परमेश्वर ने शत्रुओं को उत्तरी राज्य पर आक्रमण करने की अनुमति दी। अशुर के राजा ने पूरी आबादी को निर्वासित कर दिया, परंतु बाद में उसने कई राष्ट्रों के लोगों के साथ इस क्षेत्र को फिर से बसाया। परमेश्वर सभी लोगों को आशीष देने के अपने उद्देश्य को आगे बढ़ा रहे थे। सत्र शत्रु पाप अपनी बाइबल में दो राजाओं 17 खोले। हमारी संस्कृति में बहुत से लोगों के लिए पाप एक ऐसा शब्द बन गया है जो थोड़ी सी लत चीजों का वर्णन करता है जो पूरी तरह से वैध है, जैसे कि बहुत अधिक चॉकलेट खाना। रविवार की सुबह घर पर एक 35 वर्षीय पति और पिता की कल्पना करें। चलो उसे सोनू कहते हैं। उसने रविवार समाचार पत्र पढ़ना समाप्त कर लिया है और वो फैसला करता है कि वो अपने तहखाने की सफाई के उस अक्सर स्थगित कार्य को पूरा करे। जैसे ही वो पक्षों को छांटता है, सोनू को एक पुरानी पारिवारिक बाइबल मिलती है जो उसकी दादी की थी। उसे अपने अंदर कुछ महसूस होता है कि उसे इस बाइबल को फेंकना नहीं चाहिए। आखिरकार यह बहुत पुरानी है और कई पन्नों पर उसकी दादी की नाजुक लिखावट में संक्षिप्त पढ़िया है। वो उसे खोलता है और पढ़ता है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। हालांकि ये सोनू को विचित्र लगता है, यीशु अति भोगी लोगों को बचाने आए। सोनू को जलेबी का आनंद लेना पसंद है और वो जानता है कि उसे शायद नहीं खाना चाहिए, परंतु वो व्यायाम करता है और आमतौर पर अच्छे स्वास्थ्य में रहता है, इसलिए उसे किससे बचने की आवश्यकता है। तो कुछ पन्नों को पलटता है और पढ़ता है कि परमेश्वर उन लोगों से क्रोधित थे जिन्होंने पाप किया था। सोनू को यह बात बिल्कुल समझ में नहीं आई। उसकी समझ के अनुसार पाप क्यों परमेश्वर को क्रोधित करेगा? ये कैसा परमेश्वर है जो जरा से भी सुख भोग करने वाले लोगों पर क्रोधित करता है? इसलिए सोनू बाइबल को बंद कर देता है, खुद को यकीन दिलाते हुए कि उसने रविवार की सुबह घर पर बिताने का सही चुनाव किया। वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों से प्रेम करता है और वो ये नहीं समझ पाता कि उसकी दादी ने बाइबल को इतनी अद्भुत पुस्तक क्यों समझा। पाप को हमेशा ऐसे तरीकों से पुनर्परिभाषित किया जाता है से ऐसा लगता है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु पाप कोई हानिरहित सुख नहीं है। पाप परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करना है, और जब आप देखते पाप आप सबसे बड़ी समस्या है, आप अपने जीवन में यीशु की आवश्यकता को जानेंगे। पाप एक विनाशकारी शक्ति है। यह एक जीवन, एक परिवार या एक गिरजाघर को बर्बाद कर सकता है। दो राजाओं 17 हमें बताता है कि कैसे पाप ने एक राष्ट्र को नष्ट कर दिया। सुलेमान की मृत्यु के बाद उत्तर में 10 गोत्रों ने दक्षिण में 2 गोत्रों से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, खुद को उस आशीर्वाद से अलग कर लिया जिसे परमेश्वर ने दाऊद के शाही वंश को देने का वादा किया था। उत्तर में 19 राजा थे और उनमें से हर एक ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। लगभग 200 वर्षों के बाद परमेश्वर ने शत्रुओं को उत्तरी राज्य पर आक्रमण करने की अनुमति दी। लोगों को निर्वासित कर दिया गया और पूरा क्षेत्र एक प्रकार की बंजर भूमि बन गया। 10 उत्तरी गोत्रों के पहले राजा ने निश्चय किया था कि उसके लोग परमेश्वर की आराधना करने के लिए यरूशलेम नहीं जाएंगे, इसलिए उसने दान और बेतल में अपना खुद का धर्म स्थापित किया, जहां उसने सोने के 2 बछड़े स्थापित किए। इस मानव निर्मित धर्म ने एक ऐसी संस्कृति को जन्म दिया जहां अमीर ऐश्वर्य में रहते थे और गरीबों के प्रति पूर्ण उपेक्षा दिखाते थे। तर्के हिंसा से भरी हुई थी और परमेश्वर के लोग अवंचित बच्चों को आग में जलने के लिए देने की अश्लील प्रथा में लिप्त थे, और फिर भी परमेश्वर ने अपने लोगों के खिलाफ जो पहला आरोप लगाया वह हिंसा, हत्या, लालच और यहां तक कि बच्चों के प्रति क्रूरता भी नहीं था। परमेश्वर की पहली शिकायत यह थी कि उसके लोगों ने दूसरे देवताओं की आराधना की थी। पहली 4 आज्ञाएं स्वयं परमेश्वर के बारे में है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर न बनाना, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। हमारी पहली बुलाहट ईश्वर केंद्रित जीवन के लिए। बाइबल इसे भक्ति कहती है और इस प्राथमिकता की पुष्टि यीशु की शिक्षा से होती है। सबसे बड़ी आज्ञा के बारे में पूछे जाने पर यीशु ने उत्तर दिया, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम कर। पहली 4 आज्ञाओं में हमें भक्ति की ओर बुलाने के बाद परमेश्वर हमें दूसरों के प्रति धर्ममय होकर संबंध रखने के लिए बुलाते हैं। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, तू खून न कर, तू व्यभिचार न कर, तू चोरी न कर, तू झूठी साक्षी न देना, लालच न करना। परमेश्वर हमें अन्य लोगों के साथ हमारे संबंधों के द्वारा उनकी प्रेम को दर्शाने के लिए बुलाते हैं। मसीह ने इसकी पुष्टि की जब उन्होंने कहा कि दूसरी आज्ञा यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम। धार्मिकता भक्ति की नींव पर टिकी है, इसलिए जब लोग परमेश्वर को अस्वीकार करते हैं तो धार्मिकता उनकी पकड़ से बाहर हो जाती है। जब एक राष्ट्र जीवित परमेश्वर से दूर हो जाता है तो इसका परिणाम नैतिक भ्रम और पाप और बुराई की खुली छूट होगा। उत्तरी राज्य में पाप लोगों द्वारा परमेश्वर को अस्वीकार करने के साथ शुरू हुआ और ये उनके द्वारा अपने बच्चों को आग में डालने के साथ समाप्त हुआ। उनके द्वारा बाइबल की नैतिकता को खो देने का कारण यह है कि उन्होंने बाइबल के परमेश्वर को अस्वीकार कर दिया। आपके पास भक्ति के बिना धार्मिकता नहीं हो सकती। हमारे मित्र सोनू, जो रविवार की सुबह तहखाने की सफाई कर रहा था, चाहता है कि उसका परिवार धार्मिकता के लाभों का आनंद उठाए। वो चाहता है कि शादी सफल रहे और वो चाहेगा कि उसके साथ व्यापार करने वाले लोग ईमानदार हो और अपनी बात पर कायम रहे। वो उम्मीद करता है कि सरकारी अधिकारी झूठ ना बोले और वो चाहता है कि उसके बच्चे सुरक्षित रहे। सोनू धार्मिकता के सभी लाभ चाहता है, परंतु वो परमेश्वर को नहीं चाहता और यही उसका पहला और सबसे बड़ा पाप है। सोनू ईश्वर विहीन है। वो एक सफल पारिवारिक व्यक्ति है जो अपना और अपने परिवार का भला चाहता है, परंतु उसके जीवन में ईश्वर के लिए कोई स्थान नहीं है। हमारी पहली प्रवृत्ति ईश्वर से प्रेम करने का नहीं है, बल्कि उनका विरोध करने की। उनकी शक्ति हमारी स्वतंत्रता के लिए खतरा प्रतीत होती है और उनकी पवित्रता हमारे अहंकार को ठेस पहुंचाती है। जब तक परमेश्वर हमारे हृदयों को नहीं बदलता, हम हमेशा उनका विरोध करते रहेंगे। पापी मन परमेश्वर का विरोधी होता है, परंतु परमेश्वर अत्यंत सहनशील है। वे 200 वर्ष तक के न्याय को टालते रहे और भविष्यद्वक्ताओं को भेजते रहे ताकि वे अपने लोगों को भक्ति और धार्मिकता की ओर फिर से बुला सके, परंतु लोगों ने नहीं सुना। इसके बजाय उन्होंने यहोवा को क्रोध दिलाने वाले दुष्ट काम किए। ढकना शब्द पर ध्यान दें। क्रोध परमेश्वर के स्वभाव में नहीं है। परमेश्वर सदैव पवित्र, वह सदैव प्रेमीय है, परंतु वह सदैव क्रोधित नहीं होता। प्राचीन देवता स्वभाव से क्रोधित थे, हमेशा क्रोध से सुलगते रहते थे और उन्हें लगातार प्रसन्न करने की आवश्यकता होती थी। उन्हें शांत करने के लिए चढ़ावा चढ़ाया जाता, परंतु उनका क्रोध कभी शांत नहीं होता था। उनका क्रोध कभी कम नहीं हुआ, ये केवल कायम रहा। परंतु बाइबल के परमेश्वर पूरी तरह से अलग है। यहोवा विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। क्रोध करना परमेश्वर का स्वभाव नहीं, परंतु उनके क्रोध को भड़काया जा सकता है और इसके लिए हमें आभारी होना चाहिए। हम उन लोगों की प्रशंसा नहीं करते चुपचाप खड़े रहते हैं जब दूसरों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा हो। हम उस देवता की पूजा कैसे कर सकते हैं जो तब भी शांत था जब लोग अपने बच्चों को आग में डालते थे। ध्यान दे कि जब परमेश्वर के क्रोध को भड़काया जाता है तो वो क्या कहते हैं। इस कारण यहोवा इज़राइल से अति क्रोधित हुआ और उन्हें अपने सामने से दूर कर दिया। प्रतिज्ञा किए हुए देश के संदर्भ में बाइबल की कहानी के अंत में हमें बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो कभी जीवित रहा है वह परमेश्वर के सामने खड़ा होगा और धर्म भ्रष्ट और अधर्मी परमेश्वर की उपस्थिति से निकाल दिए जाएंगे। वह नरक है, अनंत काल परमेश्वर की आशीष से बाहर। जब परमेश्वर ने अपने लोगों को अपनी उपस्थिति से हटा दिया तो जिस देश को परमेश्वर ने आशीष के रूप में देने का वादा किया था वह उजार और निर्जन हो गया। किंतु अशूर के राजा ने अपने पूरे साम्राज्य से लोगों को लाकर वहां बसाया और उस क्षेत्र को फिर से आबाद किया। जब ये अप्रवासी उस देश में पहुंचे तो उन्हें एक अप्रत्याशित समस्या का सामना करना पड़ा। उनमें से कई लोगों पर शेरों ने हमला किया था। जब इस समस्या के बारे में अशूर के राजा को पता चला तो उसने सोचा कि स्थिति से निपटने का सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि वहां रहने वाले लोगों में से एक याजक को ढूंढा जाए। उसे यह लगा कि एक स्थानीय याजक को पता होगा जिस भी कारण से परमेश्वर इस समस्या को भेज रहे हैं, उसे शांत करने के लिए क्या करना चाहिए। इसलिए उसने एक यहूदी याजक को इज़राइल में वापस भेजे जाने का आदेश दिया और तब जो याजक शोमरोन से निकाले गए थे उनमें से एक जाकर बेतेल में रहने लगा और उनको सिखाने लगा कि यहोवा का भय किस रीति से मानना चाहिए। यहां परमेश्वर की दया कार्य में थी। वे लोगों को उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम से उस देश में ले आए जिसे परमेश्वर ने आशीषित करने का वादा किया था और उन्होंने वहां अपने एक याजक को भेजा ताकि ये लोग परमेश्वर को जान सके। कई देशों के लोगों को सच्चाई का ज्ञान कराया गया, परंतु समय के साथ भ्रमित हो गए क्योंकि वे अपने देवताओं की भी पूजा करते। इन लोगों को सामरी कहा जाने लगा। जब यीशु तमरिया से होकर गए तो वहां उनकी भेंट एक स्त्री से हुई जो भक्तिहीन और अधार्मिक थी। यीशु ने उसे यह कहकर शुरू नहीं किया कि परमेश्वर उसके पापों पर क्रोधित है। उन्होंने परमेश्वर के साथ एक सही संबंध की और उसका मार्गदर्शन करते हुए प्रारंभ किया। यीशु ने उससे कहा कि परमेश्वर उन आराधकों को ढूंढते हैं जो पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। भक्ति की जड़ धार्मिकता है और उस व्यक्ति से धार्मिकता के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं जो परमेश्वर को नहीं जानता और उनसे प्रेम नहीं करता। यीशु ने परमेश्वर को जानने के बारे में सामरी स्त्री से बात करना शुरू किया क्योंकि वहीं से स्थायी परिवर्तन शुरू होता है। मसीह हमारी ईश्वरहीनता और हमारी अधार्मिकता दोनों से निपटने के लिए मरे। क्रूस पर पिता ने पुत्र के साथ ऐसा व्यवहार किया मानो यीशु ने एक ईश्वरीयहीन जीवन व्यतीत किया हो और मानो वो हर प्रकार की अधार्मिकता के दोषी हो। पिता अपने पुत्र से दूर हो गए और यीशु परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो गए। इसलिए यीशु ने बड़े शब्द पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मसीह अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। यदि आप विश्वास और पश्चाताप में यीशु के पास आएंगे तो वो आपको एक भक्तिमय जीवन में ले जाएंगे जो कि धार्मिकता में आपके विकास की शुरुआत होगी। तो आइए हम देखें कि आज हमने क्या सीखा। परमेश्वर हमें भक्ति और धार्मिकता के लिए बुलाते हैं। हमें अपने पूरे दिल से परमेश्वर से प्रेम करना है और हमें अपने पड़ोसी से खुद के समान प्रेम करना है। जब हम ईश्वर का ज्ञान खो देते हैं तो नैतिकता कायम नहीं रह सकती। परंतु जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो वो हमें पिता से मेल मिलाप करवाएंगे और धार्मिकता के मार्ग में हमारी अगुवाई करेंगे।